समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हाथ में पकड़ी हुई छतरी बारिश को रोक नहीं सकती, मगर हमें बारिश में खड़े रहने की हिम्मत जरूर देती है। इसी तरह आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी हमें कामयाबी नहीं दिला सकता, लेकिन जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का हौसला तो देता है ना। तो आत्मविश्वास की इसी बात से आगाज करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे का, FM गोल्ड 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर। आज सवेरे में आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर, और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रम्या। कैसी है रम्या?
मैं बढ़िया। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ओपनिंग मैसेज फॉर आर लिसनर्स नईम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर एन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 12th of February 2025. So, let's begin with the headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल पेरिस में 14वें भारत फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मंच को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंध मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर रक्षा, एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण पर प्रकाश डालते हुए इसकी स्थिर नीतियों और हाल के आर्थिक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नियामक सुधार भारत के आर्थिक शासन को अधिक विश्वास आधारित और कुशल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को रक्षा, ऊर्जा, विमानन, अंतरिक्ष, फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी मंच को संबोधित करते हुए AI और नवाचार के लिए वैश्विक और समावेशी दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया।
After a series of high-level engagements in Paris, Prime Minister Narendra Modi arrived in Marseille along with French President Emmanuel Macron. The Indian community in Marseille gave the Prime Minister a warm welcome upon his arrival. Continuing their strong partnership, Prime Minister Modi and President Macron are participating in key events today. The two leaders will jointly inaugurate India's first new consulate in Marseille, a move that will not only enhance consular services for the Indian community in southern France, but also play a crucial role in the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. They will also visit the International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER, a multinational initiative, including India and France, aimed at harnessing nuclear energy for global benefit. Following his engagements in France, Prime Minister Narendra Modi will depart later today for a two-day visit to the United States at the invitation of President Donald Trump.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि आतंक वित्त पोषण की निगरानी, नार्को आतंकवादी मामलों पर नजर और जम्मू कश्मीर में पूरे आतंकी तंत्र को समाप्त करना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया। गृहमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की शीतकालीन कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने CRPF को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में काम कर रहे खुफिया तंत्र की भी समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए कवरेज और पैठ बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव, सूचना ब्यूरो IB निदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said that Lam Research has announced major investment of over 10,000 crore rupees in India. In a social media post, Mr. Vaishnav said, "It is one more milestone in India's semiconductor journey." He said it is a big vote of confidence in Prime Minister Narendra Modi's semiconductor vision. Lam Research is a US-based global supplier of wafer fabrication equipment and related services to the semiconductor industry. Founded in January 1980, Lam Research is currently the world's leading semiconductor companies.
चालू वित्त वर्ष में देश का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वार्षिक आधार पर 14.69% की वृद्धि के साथ 17,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19% अधिक वृद्धि हुई है। व्यक्तिगत आयकर संग्रह बढ़कर 9,47,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह 7,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the Gaza ceasefire will end if Hamas does not release Israeli hostages on Saturday noon. Earlier, Hamas said on Monday that Israeli ceasefire violations have reached a point where it would no longer hold up its end of the bargain and will delay the release of an upcoming group of Israeli captives indefinitely. Netanyahu said the Israeli military is ready to return to intense fighting until Hamas is finally defeated. The ceasefire deal in Gaza began on 19th January after months of negotiations led by the US, Qatar and Egypt. And now news from the Mahakumbh at Prayagraj. The Magh Purnima Snan of Mahakumbh is underway in Prayagraj. The sacred snan holds great significance as it marks the conclusion of the special ritual of Kalpvas, with over 10 lakh Kalpvasis participating this year. According to tradition, observing Kalpvas on the banks of the Sangam in Prayagraj until Magh Purnima is believed to yield the spiritual benefits of 1,000 years of penance. Performing Kalpvas during Mahakumbh is considered especially auspicious and rewarding.
Mahakumbh 2025 se juda har update ab aapko milega Kumbhvani par. Kumbhvani. जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
Now we go over live to our correspondent Adarsh, who is at Triveni Sangam in Prayagraj. Adarsh, what kind of enthusiasm are you witnessing during the Magh Purnima Snan?
Ramya, the religious fervor is at its peak. A huge throng of devotees and pilgrims are currently present here. It is believed that bathing in the Ganga River on this day is considered very auspicious. It also marks the end of the special ritual of Kalpvas. As you know, more than 10 lakh Kalpvasis are here. After their bath, prayers and donations, they will live the Mahakumbh. And on such a holy occasion that came after 144 years in Prayagraj, Kalpvasis, saints, devotees and every other pilgrims will donate food, grains, money, jaggery and other articles after bathing at the ghats of Sangam. And talking about the crowd that is marching, that is walking here, the crowd is chanting hymns and prayers to keep their spirit high despite a long journey that they have traveled to here. And the street market is also very lively here.
Okay, and Adarsh, what are the security arrangements in place for smooth conduct of the snan?
Talking about the security arrangement, it has been very tight. The water police, NDRF, divers are all constantly appealing to the devotees to vacate the ghats after bathing, Ramyam. Every moment also here is also being monitored by the ICCC Center. Special traffic arrangements that were introduced yesterday are still in place as long as it takes to vacate the crowd and the premises to better manage the traffic here. And apart from this, the landmark places such as the Bade Hanuman Temple, Digital Mahakumbh and Akshay Vat are closed for today to in view of the huge crowd that will be present today. And at different places, barricades are introduced to better navigate the crowd. And apart from this, hello?
Yeah.
Yeah, apart from this, you also see on loudspeakers that people are being broadcasted news updates and radio programs to keep them vigilant and informed.
Thank you, Adarsh, for that update.
और अब खबरें प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई, जिसमें राम्या के पास चेन्नई से कुछ खबरें हैं।
जी बिल्कुल नईम। सो द मेट्रो सिटी न्यूज फ्रॉम चेन्नई इज दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप्ड अ फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशंस ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। द चिप named Iris can be used in launch vehicles, ground stations, and for Internet of Things, that is IoT, and industrial IoT applications. IIT Madras Director V. Kamakoti stated that this achievement demonstrates India's expertise and ecosystem for producing commercial-grade semiconductor chips. For some more news from Chennai, the Sumanasa Foundation and Project 39A in collaboration with Nam Veed, Nam Ur, Nam Kadai, are organizing a book donation drive for inmates at Pural Prison. Book lovers can contribute fiction, non-fiction and other engaging reads. Launched in 2023 as part of the Art in Prison program, these organizations have been working with inmates, teaching them visual arts, fine arts and music. Project coordinator Rehmunisa Begum stated that the goal is to keep prisoners productively engaged while exposing them to various art forms.
दिल्ली से भी मेरे पास दो खबरें हैं, आप ही की तरह जैसे आपके पास चेन्नई से दो खबरें थी।
जी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और भारत में नेदरलैंड्स की राजदूत मारिसा जेवराड्स ने कल शांति पथ पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित ट्यूलिप उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर श्री सक्सेना ने कहा कि वो दिल्ली को फूलों का शहर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप उत्सव उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। और एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राजधानी में छुट्टी की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा, इस कारण दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहेगा।
Moving on to some metro news from Bengaluru, the Indian public sector undertaking Bharat Electronics Limited has formed a joint venture with Israel Aerospace Industries during the Aero India show in Bengaluru. This partnership will serve as a single point of contact for long-term product support services for India's defense forces. The joint venture will leverage manufacturing capabilities and technological innovations, promoting India's self-reliance in line with the Make in India vision while delivering world-class solutions. The collaboration will facilitate the transfer of advanced technological capabilities to India and help develop local expertise in critical defense systems. Additionally, the venture aims to create long-term job opportunities and upskill the local workforce.
मुंबई से मेरे पास फिर से दो खबरें हैं। मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आयोजित एक समारोह में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री धर्मवीर मीणा के हाथों 11 मध्य रेलवे कर्मचारी सदस्यों को सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 11 कर्मचारी सदस्यों में मुंबई डिवीजन से 3, पुणे डिवीजन से 4, सोलापुर डिवीजन से 2, भुसावल डिवीजन से 1 और नागपुर डिवीजन से भी 1 शामिल हैं। ये पुरस्कार ड्यूटी के दौरान उनकी सतर्कता, अप्रिय घटनाओं को रोकने में उनके योगदान और पिछले महीनों के दौरान ट्रेन परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक पदक, प्रशंसा प्रमाण पत्र, अनुकरणीय सुरक्षा कार्य का एक प्रशस्ति पत्र और 2,000 रूपये का नकद पुरस्कार शामिल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने कल मंगलवार को कहा कि राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आबादी को देखते हुए 2025-26 से हर साल जिला वार्षिक योजना सामान्य में नियमित योजनाओं के लिए अनुमत निधि का अधिकतम 1% उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए आरक्षित किया जाएगा।
And now for some Metro City updates from Hyderabad. The ARK Foundation, which supported G. Trisha, a standout performer in the Under-19 T20 World Cup, in her cricketing journey from Bhadrachalam district in Telangana, celebrated her success with a felicitation ceremony in Hyderabad yesterday. The 19-year-old Trisha was honoured by ARK Group Chairman and Managing Director Gummiram Reddy at a special event attended by Indian badminton legend Pulela Gopichand, former Indian cricketer and Chief Selector MSK Prasad and other dignitaries. Speaking at the event, Trisha expressed her gratitude to the ARK Group for its continuous support and encouragement.
कोलकाता से एक खबर यह है कि आज माघी पूर्णिमा है. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर में पुण्य स्नान में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं. जिला प्रशासन ने सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं. प्रशासन अतिरिक्त बस और जहाज सेवाएं भी चला रहा है. स्वच्छ पेयजल शौचालय की सुविधा के लिए उचित उपाय किए गए हैं. ठहरने की सुविधा का भी प्रबंध किया गया है. सुंदरबन पुलिस जिला प्रशासन सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहा है. दूसरी तरफ माघी पूर्णिमा के अवसर पर हुगली जिले के त्रिवेणी में भी लाखों श्रद्धालु पुण्य स्नान में भाग ले रहे हैं.
मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स. In a setback to Indian cricket team, its star bowler Jasprit Bumrah has been ruled out of the ICC Champions Trophy 2025 due to a lower back injury. Details from our correspondent.
The BCCI made this shocking announcement for cricket fans last night and named Harshit Rana as Bumrah's replacement. Rana has impressed everyone in the ongoing ODI series against England, scalping 4 wickets in his first 2 outings. Team India have also named spinner Varun Chakravarti in the squad, replacing Yashasvi Jaiswal, who was initially named in the provisional squad. Yashasvi Jaiswal, Mohammad Siraj and Shivam Dubey are kept as non-travelling substitutes who will travel to Dubai as and when required. Moving on to next update from men's cricket, India will play against England in the final clash of the 3-match ODI series at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this afternoon. The hosts have already clinched the series with an unassailable 2-0 lead and the men in blue will now aim to clean sweep the series. Skipper Rohit Sharma has also gained momentum with a century in Cuttack, while runs are yet to come from star batsman Virat Kohli. Next we have from the Indian Super League ISL football, where 22nd match week is set to begin today as Mumbai City FC will host FC Goa at the Mumbai Football Arena this evening. FC Goa are placed second in the points table while Mumbai City FC are 5th in the rankings. Both the sides will aim to maintain their positioning in the top 6. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
और अब प्रमुख महानगरों के खबरों के बाद महानगरों का मौसम. दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा. मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में हल्का कोहरा छाया रह सकता है. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
Chennai is expected to have fog in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature will be 22 degrees Celsius and maximum around 32 degrees. Bengaluru is expected to have mist in the early hours. The minimum temperature will be 16 degrees Celsius and maximum around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब है वो वक्त जब हम 12 फरवरी का इतिहास बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास छोटी सी एक खबर है, अगर आप इजाजत दें तो शामिल करूं.
बिल्कुल करिए प्लीज.
आज हम राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मना रहे हैं. हर साल मनाया जाने वाला ये दिन भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में उत्पादकता के महत्व पर प्रकाश डालता है. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी द्वारा आयोजित इस दिन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में दक्षता, नवाचार और उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देना है. ये व्यक्तियों और संगठनों को ऐसे अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो प्रदर्शन को बढ़ाते हैं और समग्र प्रगति में योगदान करते हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1958 में स्थापित एनपीसी तकनीकी और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करके भारत में उत्पादकता उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये संगठनों को उनके संचालन में दक्षता में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं. ये मेरे पास खास खबर थी और मैं किसी का कर्ज कभी उधार नहीं रखती हूं. अगर आप चाहें तो आप भी ऐसी कोई खबर ले सकती हैं.
जी बिल्कुल, मेरे पास भी खबर है, थोड़ी सीरियस खबर है.
अच्छा.
Because we are observing the International Day for Prevention of Violent Extremism as well as which is conducive to terrorism. This day is observed to raise awareness of the threats linked to violent extremism conducive to terrorism and to enhance international cooperation in this regard. Violent extremism threatens peace, security, human rights, and development worldwide. It is a complex issue not tied to any one region, nationality, or belief system. Groups like ISIL, Al-Qaeda, and Boko Haram have fueled this crisis, spreading intolerance and using social media to promote violence. Their actions have led to mass displacement, worsening an already severe humanitarian crisis. While nothing justifies violent extremism, it often arises where human rights are violated, governance fails, and people feel oppressed. Addressing these root causes is essential to countering its spread.
वाकई बहुत सीरियस और महत्वपूर्ण मुद्दा था आपकी खबर का, लेकिन इससे पहले कि 12 फरवरी नाराज हो जाए उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं।
बिल्कुल, तो आज ही के दिन इन 1502 पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा सेट सेल फॉर हिज सेकंड वॉयज टू इंडिया।
1736 में आज ही के दिन नादिर शाह फ्रांस का शासक बना था।
In 1818, Chile was proclaimed an independent republic after 3 centuries of Spanish colonial rule. Puyi, the last emperor of China, was forced to abdicate to pave the way for the Republic of China in 1912. In 1922, Mahatma Gandhi withdrew from the non-cooperation movement against the British over rising violence in the country.
1928 में तो आपने बताया कि गांधी जी के बारे में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा 1928 में की गई थी। 1934 में फ्रांस में श्रमिक आम हड़ताल पर गए थे।
इन 1941, the first penicillin injection was administered to British policeman Albert Alexander by physician Charles Fletcher.
1975 में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया था। 1996 में फलस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गजा में फलस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 2000 में पंडित रविशंकर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉमनवेयर डीला लेजेंडरी ऑनर से सम्मानित किए गए थे।
एंड इन 2017 ब्रिटिश पॉप सिंगर एडेल वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग हेलो एंड बेस्ट एल्बम 25।
2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से भी इसी दिन सम्मानित करने की घोषणा की थी। और 2013 में उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। और अब आखिरी सेगमेंट पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम बात करने वाले हैं पुण्यतिथि, जयंती और जन्मदिवस से जुड़ी उन हस्तियों की जो आज ही के दिन के साथ जुड़े हुए हैं।
जी,
पुण्यतिथि की बात करें तो महादजी शिंदे, जो रणोजी सिंधिया के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। वो अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल में प्रमुख रूप से सक्रिय थे। महादजी शिंदे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सैनिक गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। अपनी तीव्र बुद्धि और सैनिक कुशलताओं के कारण ही वो मराठा साम्राज्य में विशिष्ट स्थान रखते थे। उनकी मृत्यु 1794 में हुई थी।
Today is the death anniversary of Immanuel Kant. He was a German philosopher and one of the central Enlightenment thinkers. Born in 1724, Kant's comprehensive and systematic works in epistemology, metaphysics, ethics, and aesthetics have made him one of the most influential and controversial figures in modern Western philosophy. He has been called the father of modern ethics, the father of modern aesthetics, and for bringing together rationalism and empiricism, and the father of modern philosophy.
आज ही पुण्यतिथि है गोपी कुमार पोदिला की। प्रसिद्ध विज्ञान भारतीय अमरीकी वैज्ञानिक तथा अलाबामा विश्वविद्यालय में वो एक संकाय सदस्य थे। अपनी अनुसंधान रुचि के रूप में उन्होंने जैव ऊर्जा, कार्यात्मक जीनोमिक्स संयंत्र, आणविक पादप जैविकी और जैव तकनीकी के लिए अभियांत्रिकी वृक्ष जैव ईंधन को सूचीबद्ध किया था। अपने वैज्ञानिक कार्यों के अंतर्गत गोपी कुमार पोदिला ने विशेष रूप से उन गुणसूत्रों का अध्ययन किया जो वृक्षों में वृद्धि को विनियमित करते हैं, विशेष रूप से चिनार और अस्पन वृक्ष में। इसके अलावा उन्होंने मक्का के वैकल्पिक स्रोतों के लिए तेजी से बढ़ते वृक्षों और घासों को की इथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित उपयोग के रूप में पक्ष समर्थकता की थी।
Today we are also remembering American actor Kenneth Mars on his death anniversary. He made his acting debut in 1962 as a book publisher on Car 54, Where Are You? He later appeared in television series like Gunsmoke, Get Smart, Macmillan and Wife, Columbo, Harry O, The Bob Crane Show and The Police Woman. He also appeared in Malcolm in the Middle as a recurring character in 2 seasons.
आज जयंती है नाना फडणवीस की. एक मराठा राजनेता थे नाना फडणवीस, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा से में नियुक्त थे. वो अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमता दोनों के लिए बहुत मशहूर थे. नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव यानी राघोवा की स्वयं पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी. उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक छत्र के नीचे एकत्र करने की कामयाब कोशिश की. पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे. यूरोपियों ने उन्हें एक खास नाम दिया था. ये नाम प्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली के नाम पर आधारित था और यूरोपियंस उन्हें मराठा मैकियावेली कहा करते थे.
And Naeem, today we are remembering Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, on his birth anniversary. He served as the President from 1861 until his assassination in 1865. He led the United States through the American Civil War, defending the nation as a constitutional union, defending the Confederacy, playing a major role in the abolition of slavery, expanding the power of the federal government, and modernizing the U.S. economy. Lincoln is remembered as a martyr and a national hero for his wartime leadership and for his efforts to preserve the Union and abolish slavery. He is often ranked in both popular and scholarly polls as the greatest president in American history.
आज ही जयंती है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की, जिन्हें आमतौर पर सी एफ एंड्रयूज के नाम से जाना जाता है. और उन्हीं एंड्रयूज के नाम पर हमारी दिल्ली में भी एक सड़क है, आपको पता होगी.
जी बिल्कुल,
एंड्रयूजगंज. ये एक मिशनरी, शिक्षक और समाज सुधारक थे. महात्मा गांधी के करीबी मित्रों में से सी एफ एंड्रयूज भी एक थे. वो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनके साथ बराबर शामिल रहे, नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने. और गांधी जी को अफ्रीका से लौटकर भारत आकर आंदोलन करने के लिए भी सी एफ एंड्रयूज ने ही मनाया था. शायद सी एफ एंड्रयूज एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को मोहन कहकर संबोधित करते थे. सी एफ एंड्रयूज ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को अर्पित किया. उन्होंने ब्रिटिश नागरिक होते हुए वे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जनरल ओ डायर के कुकृत्य को जानबूझकर किया गया कुकृत्य और जघन्य हत्याकांड बताया.
Today is the birthday of former Indian cricketer Gundappa Vishwanath. Vishwanath was rated as one of India's finest batsmen throughout the 70s. He played Test cricket for India from 1969 to 1983, making 91 appearances and scoring more than 6,000 runs. He also played in ODIs from 1974 to 82, including the World Cups of 1975 and 79. He was popularly nicknamed as Vishy and had an elegant and wristy batting style, which emphasized timing rather than power. In 2008, he received the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award, the highest honor Indian Cricket Board can bestow on a former player.
आज जयंती है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की. आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती. 14 साल की उम्र तक उन्हें रुद्री आदि के साथ साथ यजुर्वेद और अन्य वेदों के भी कुछ अंश कंठस्थ हो गए थे. व्याकरण को भी वो अच्छी तरह जानते थे. और बहुत सारा काम उन्होंने ऐसा किया है कि उनका नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है. और अब बात कर लेते हैं प्राण कृष्ण सिकंद की, जिनको प्यार से हम और आप क्या 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 पुकारते हैं रम्या बताएंगी.
प्राण.
लेकिन ये प्यार जो है वो हम और आप इसलिए करते हैं कि हम उनकी अभिनय को सलाम करते हैं. वरना एक वक्त ऐसा था जब वो खलनायकी की क्या करते थे तो लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक प्राण रखना
से मना कर दिया था.
जी, और उनकी जो डायलॉग अदा करने का अंदाज था वो आज तक याद किया जाता है.
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता. शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद. राहत.
और प्राण हिंदी सिनेमा में ऐसे योगदान दे चुके हैं जिसके लिए 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया. 2012 में भारत सरकार ने प्राण को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से भी सम्मानित किया. और अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्राण को बोलने देते हैं.
सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, बात खास खास है.
बोलने दीजिए, अब हम तो यही बोलेंगे कि जाने का वक्त हो रहा है। तो इजाजत लेते हैं अपने श्रोताओं से, नईम अख्तर और रम्या को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए।
एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग इज हिंदी न्यूज़ बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज़ इन इंग्लिश एट 8:15 AM।
नमस्कार।